That March, for our expense, March name, we're not going to accept the material body, which could cause a bondage because it was in a movie.
महाराज जी भी नहीं चाहते थे कि उन्हें भौतिक देह द्वारा मिले क्योंकि वो भगवान के भक्त थे.
They wanted a body which he could render devotional service to the Lord.
वो एक शरीर चाहते थे जिससे वो भगवान की सेवा कर सके.
Brother quotes from Bhaktivinoda Thakur. My Lord, if you want me to take birth and accept the material body again, kindly do me this favor. Allow me to take birth in the home of your servant, your devotee. I do not mind being born there, even as an insignificant future, like an insect.
कि अगर आप चाहते हैं कि मैं शरीर धारण करूं तो मुझे किसी भक्त के घर में जन्म दे, चाहे कोई कीड़ा ही कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, भक्त के घर में जन्म दे.
Let's go back and see what a little bit of history here was leading up to the current verse.
जब पीछे करके देखते हैं कि पीछे की हिस्ट्री क्या है जो इस वर्ष तक हमें लेके आई है.
Going back to the first verse of the chapter because understanding the context here is very important.
पहले वर्ष में जा रहे हैं क्योंकि कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है हमें.
Beginning with the first verse.
वर्ष नंबर फर्स्ट.
Shri Sukhdev Goswami said, after beginning sacrifices, Maharaj Nimi, the son of Ishvakuru. So this is how we are in the subject. Now we're on the subject of Nimi because we're still discussing the dynasty of the sun god.
यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा यज्ञों का शुभ आरंभ करने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज नीमि ने, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इक्ष्वाकु पुत्र और सन गॉड की जो डायनेस्टी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं.
So it appears that Maharaj Nimi is apparently the grandson of Surya.
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि महाराज नीमि जो है ग्रैंड सन यानी कि पोते हैं सूर्यदेव
के. इक्ष्वाकु इज द सन ऑफ द सन गॉड.
इक्ष्वाकु जो है वो सन गॉड सूर्यदेव के पुत्र है.
भगवान कृष्ण ने कहा आई स्पोक दिस वर्ड टू गिव टू द सन गॉड एंड सन गॉड स्पोक टू दिस सन इक्ष्वाकु दिस इज सन इक्ष्वाकु. सो देयर वी सी द डायनेस्टी कनेक्शन ऑफ महाभारत दे आर mundane personalities.
तो हम भगवद गीता में भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो बुनियाद ज्ञान है कि मैंने सूर्यदेव को दिया और सूर्यदेव ने अपने पुत्र को दिया. और आप देखते हैं कि जो ज्ञान है इसे साधारण मनुष्य को ही नहीं भगवान के भक्तों को बाद भक्तों को दिया गया जो राजस्व भक्तों से खड़ी हुई है.
So Maharaj Nimi requested the great sage Vasishtha to take the post of chief priest at Ajna.
तो महाराज नीमि ने वशिष्ठ मुनि को उनसे अनुरोध किया कि वो यज्ञ में उनके पुरोहित बने.
वशिष्ठ replied, my dear Maharaj Nimi, I have already accepted the same post and the sacrifice for them by Lord Indra.
वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे महाराज मैं इंद्र के यज्ञ के लिए ऑलरेडी जा रहा हूं.
Second verse. Vasishtha said, I shall return here after finishing the judgment of Indra. Kindly wait for me until then.
मैं इंद्र का यज्ञ पूरा करके यहां वापस आऊंगा फिर जब तब तक मेरी प्रतीक्षा करें.
Maharaj Nimi remained silent and Vasishtha began to perform the sacrifice for Indra.
Maharaj Nimi चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के लग गए. तो यहाँ पर मेन स्टोरी सुना जाता है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है.
If you want to read stories, don't read some rubbish, cheap garbage novel.
अगर आप कोई कहानियां सुनना चाहते हैं तो कोई सस्ती और मनोधारणा वाली कहानियां ना सुनते
हैं.
ये श्रीमद भागवत का अध्ययन कीजिए.
who was making a point like this when I was in Calcutta at a Bhakti Riksha group, 800 Bhakti Riksha group members. And spontaneously, I got some inspiration to sell sets of bhaktas in a city and congregation where they don't buy books.
तभी मुझे अचानक से इंस्पिरेशन मिली कि मैं वहां पर श्रीमद भागवत के सेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं, उनको वितरण करूं.
So I said, why do you read cheap junky novels?
तो मैंने उन्हें कहा कि आपको सस्ते बेकार ये गंदे नॉवेल्स क्यों पढ़ने हैं?
Why not read Srimad Bhagavatam's full, very fascinating stories?
आप श्रीमद भागवत क्यों नहीं पढ़ते जिसके बहुत सुंदर कथाएं हैं, बहुत सुंदर कहानियां हैं?
Find this story interesting?
Yeah, आपको ये कहानी लगी इंटरेस्टिंग लग रही है?
जी 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 जी
good good. Then you can bring it.
अच्छा है तो आपको इसमें भावना में आने पड़ सके.
So Vishisa said, wait for a while, and Maharaj Nimi remained silent. He didn't say yes or no. He just said yes. The fact that he remained silent is quite significant.
हम यहाँ पे देखते हैं कि महाराज मिनी जो है चुप रहे और ये चुप रहना बड़ा अजीब सा है. और वशिष्ठ जो है लॉर्ड भगवान इंद्र के जैसे संपर्क करने में लग गए.
Seen as guru, not just diksha, not just dictionaries. culture, every grandmother was seen as guru.
हम यहाँ पे देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने महाराज जी ने प्रतीक्षा नहीं करी। और हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जो ब्राह्मण होते थे उन्हें गुरु के समान समझा जाता था। जब ऐसे ही किसी से भिक्षा गुरु गुरु है, सारे ब्राह्मण वर्ग को गुरु के समान देखा जाता था।
Situation because Maharaj Nimi is a disciple of Vashishtha.
ये बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि महाराज निमि जो है वशिष्ठ के शिष्य थे।
But he didn't want to wait, so he's actually disobeying his Guru Maharaj. This is heavy duty. This is one of those don't throw this at home stories.
लेकिन वो वेट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का अवहेलना की। तो ये बहुत ही एक हैवी ड्यूटी चीज है, गंभीर चीज है, तो इसको घर पे करने का प्रयास मत कीजिएगा।
So this is just like the other example of disobeying guru for the right reason is yes, Bali Maharaj, thank you very much.
हम देखते हैं ऐसा एक और उदाहरण है जब गुरु की अवहेलना करी गई है सही चीज के लिए, और वो उदाहरण है बलि महाराज का।
That's another wrong choice.
ये भी एक ऐसी स्टोरी जो आपको करते खुद नहीं करनी चाहिए।
For the differences of Vishta, Vashishta is much more spiritually advanced than the guru of, you know, of Vanavaraj.
हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आगे है, एडवांस है, जो बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य से।
The Vasis technically not even counted as a devotee of the Lord.
शुक्राचार्य तो भगवान के भक्त में भी वर्णित नहीं करे जाते।
We know it's all about Lord Vishnu, but bhakti is lacking. He knows all about Lord Vishnu, but bhakti is lacking.
वो भगवान विष्णु के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनके हृदय में भगवान विष्णु के लिए भक्ति नहीं है।
So later we see that we can't say a thing about Vashishtha is a great soul.
लेकिन हम यहाँ पे वशिष्ठ के बारे में कह सकते हैं वशिष्ठ तो एक बहुत महान जीवात्मा है।
Not ordinary, not ordinary yogi, not ordinary mystic.
वो एक कोई साधारण योगी नहीं है, साधारण शक्ति वाले कोई मनुष्य नहीं है।
So the Lord first continues, after completing the sacrificial performance for King Indra, the spiritual master Vashishtha returned and found that his disciple Maharaj Nimi had disobeyed his instructions.
चौथे श्लोक में हिंदू का यज्ञ संपन्न करने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज देवी ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है।
Thus Vashishtha cursed him saying, may the material body of Nimi, who considers himself learned, immediately fall.
अतः उन्होंने नीमी को श्राप दिया, अपने को पंडित मानने वाले नीमी का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए।
Now the fifth verse
that's even heavier. So taking the fifth verse,
anybody remember the fifth verse?
क्या किसी को याद है कि ये पांचवा श्लोक क्या है?
Yes,
Swami
Baba.
Yes, Swami Baba. तो जो मानव उत्तर दिया कि जो महाराज जमी है वो वशिष्ठ भूमि को वापस श्राप देते हैं।
महाराज Nimi is Mahabhagwa, self-realized soul. Then this is also highly unusual. He turns around and curses his guru. Well, this is terrible. I mean, not terrible, but it's amazing. It's something in Vedic culture that's unthinkable.
So Maharaj Nimi jo hai swarup shuddh hai, wo Mahabhagwa hai. Hum dekhte hain yahan pe ki Maharaj Nimi ne Vashishtha Muni ko curse kiya, shaap diya. Aur ye sadharan baat nahi hai.
So when Vashishtha cursed Maharaj Nimi, this material body of Nimi, who considered himself learned as Nimi fall, that means die now.
So Maharaj Nimi ne unhe curse diya ki aapka bhi ye jo bhauti sharir hai wo nasht ho jaye, aap bhi aapka bhi sharir tyag kar de, aap apna sharir chhod de.
The fifth verse. For unnecessarily cursing him when he had committed no offense, Maharaj Nimi counter-cursed his spiritual master.
पांचवा श्लोक, महाराज नीमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यक्ति गुरु द्वारा शापित होने पर उन्होंने भी बदले में शाप दिया.
For the sake of getting Lysippus, now he is insulting his guru, but it's with a true statement. Truth, using truth to insult his guru, which is also don't try this.
So वो सच बोल रहे हैं और सच बोलने से उनकी गुरु की वो बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये भी अपने घर से प्रयास मत कीजिए ऐसा करने का.
For the sake of getting contributions from the king of heaven, Maharaj Nimi said, you have lost your religious intelligence. Therefore, I pronounce this curse. Your body will also fall.
Maharaj Nimi ne kaha, swarg ke raja indra se ke paane ke liye mein aapne apni dharmik buddhi kho di hai. Ane mera chaap hai ki aapka bhi sharir paar ho jaye.
So, two very great souls cursing each other. This is
तो दो महान भक्त दो महान जीवात्माएं एक दूसरे को शाप दे रही हैं, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है.
So the Prabhupada probably points out that when one is infected by contaminated activities, his power, material, or spiritual reduces. So the point is that the shista is off. That's the point.
तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है.
So Prabhupada points out that although his shista was a spiritual master of Maharaj Nimi, because of his greed, he became formal.
Prabhupada आगे लिखते हैं, यद्यपि वशिष्ठ महाराज निमि के गुरु थे, किंतु लोभ के कारण उनका पतन हुआ.
So from this purport we see that Maharaj Nimi was speaking the truth. It was not just empty or it was not a fraud. This is the point.
हम यहाँ पे देखते हैं कि महाराज निमि जो है सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपराध कर रहे हैं, लेकिन सच बोलते वो चीजों को बता रहे हैं.
Because he said, for the sake of getting contributions to the kingdom of heaven, you lost your religious intelligence. In other words, you should have seen that my judgment was more important than King Indra's judgment. This is basically what Maharaj Nimi is saying.
तो महाराज जी कहते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट प्राप्त करने के नियमित आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है, तो उन्हें सोचना चाहेगा उनके लिए ये जो महाराज जी का यज्ञ है ये ज्यादा जरूरी था महाराज इंद्र के यज्ञ से.
We see this temptation for like Ranyakasipu, Ranyakasipu, gold and something.
तो हम देखते हैं ऐसी प्रवृत्ति थी रण्यकशिपु के लिए सोने के प्रति और सॉफ्ट बेड के प्रति.
So, if they're not after something in this case, we see that Vashistha was after money. That's why Prabhupada says, money is money.
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि थे वो पैसों के पीछे थे, और जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, money is money.
Yes. So even great personalities like Vashistha fall prey to the temptation of books.
जहां तक कि बड़े मुनि जैसे वशिष्ठ मुनि हैं वो भी पैसों के लालच में पैसे के लोभ में पड़ जाते हैं फंस जाते हैं.
But not pieces of paper, but those pieces of paper.
लेकिन उनके जो पैसे हैं वो ऐसे कागज में टुकड़े नहीं हैं.
Diamonds, gold, rubies, sapphires, all precious gems by our 2018 standard worth millions of crores. That's what Vashistha was after, if I understand. That's why Maharaj Nimi dared to curse him, because he was after millions of crores of precious gems, instead of seeing the importance of Maharaj Nimi's Vishnu sacrifice.
और ये जो बहुत अन्य अन्य प्रकार के जो बहुत वैल्यूएबल ये जो हीरे जवाहरात होते हैं, तो महाराज जी जो है इनके पीछे थे. 2018 के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये करोड़ों करोड़ों रुपए हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि है तारा से करोड़ों करोड़ों रुपए के पीछे थे.
So, six verse, more magic. Are you ready?
तो छठे वर्ष के अंदर बहुत बहुत बड़ा मैजिक है, क्या आप तैयार हैं?
So after cursing Vashishta, Maharishi Nimi, who was expert in the science of spiritual knowledge, gave up his body.
यह कहकर अध्यात्म में पटु महाराज नेमि ने अपना शरीर छोड़ दिया.
Vashishta, the great grandfather, gave up his body also.
पर पितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया.
But through the semen discharged by nature and Varuna, when they saw Urvasi, he was born again.
किंतु मित्र तथा वरुण के वीर्य से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया.
Prabhupada explains that when Mitra and Varuna chanced to meet Urvasi, the most beautiful prostitute of the heavenly kingdom, they became lusty, and because they were great saints, they tried to control their lust, but they could not do so unless they discharged semen.
मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्ग लोक की परम सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई, तो वे दोनों कामासक्त हो गए. मुनि होने के कारण उन्होंने हरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, अतः उन्होंने वीर्य संकलित हो गया, अतः उनका वीर्य संकलित हो गया, स्खलित हो गया. यह वीर्य एक जलपात्र में रखा गया और इसी से वशिष्ठ.
This semen was kept carefully at a water pot and Vashishta was born from it.
यह वीर्य जलपात्र में रखा गया और इसी से वशिष्ठ उत्पन्न हुए.
Do they know this modern science? Do they know how to do this?
क्या मॉडर्न साइंस में ये जानना आता है?
What do you think? No?
No.
What? This is the greatest civilization in the history of the planet. You mean you know how to do it? You can say this is a science superior to modern science? No, how could it be? This is the greatest civilization ever in the history of the planet.
ठीक है सर, आपकी जो सभ्यता है, आप तो कहते हैं आधुनिक सभ्यता है सबसे बड़ी है, सबसे अच्छी है, तो ये आधुनिक सभ्यता क्या वो नहीं कर सकती तो पुरानी सभ्यता कर पाती थी? नहीं कर सकती. नहीं.
This, I mean, they would love to know how to do these things. You know, let's face it, modern artificial insemination can't compare with this. This is superior science.
So, ये जो science है, जो विज्ञान है, जो शास्त्र में दिया है, ये ज़्यादा superior, ज़्यादा अच्छा विज्ञान है जो आज का जो modern science है.
So, the seventh verse says, during the performance of the jagannath, the body relinquished by Maharishi Nimi was preserved in a frequent substances, and at the end of the Sattva Yuga, the great saints and Brahmanas made the following request to all living gods assembled there.
Seventh Shlok. Yajna sampann karte samay Maharaj Nimi dwara yeh apne sharir ko sugandhit vastuon tatha surakshit rakha gaya, vastuon dwara surakshit rakha gaya, aur Sattva Yuga
Sattva Yajna, it's not Sattva Yuga, Sattva Yajna.
Sattva Yajna ke ant mein muniyon tatha brahmanon ne wahan ekatrit sare devtaon se yah likhit prarthna ki.
The demigods are upset about this great personality, Vashishta, now has left this body, and now Maharishi has left this body. Also, the two great souls. So, then the demigods are very concerned about it.
यहाँ पे हम देखते हैं दो महान जीवात्माएं महाराज नंदि और वशिष्ठ, उन्हें दोनों ने अपना शरीर त्याग दिया, तो जो ऋषिगण थे उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की.
So they could, in the devas say, if you are satisfied in the eighth verse, if you are satisfied with this sacrifice, and if you are actually able to do so, kindly bring Maharishi Nimi back to life.
तो उन्होंने कहा यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हैं, तो कृपया इस संसार में महाराज नंदि को फिर से जीवित कर
दें. दिस बॉडी इज राइट.
इसी शरीर में.
दिस इज अ रिक्वेस्ट बाय द सेजेस.
ये मुनियों की प्रार्थना है.
दे आर रिक्वेस्टिंग दिस मिरेकल फ्रॉम द डेमिगॉड्स.
ये जो मणिगण है वो देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं.
The demigod said yes to the request by the sages, but Marge Menemage said, in other words, he didn't actually die here, because this whole thing is And he's a mystic, I thought about
it. So, देवताओं ने उत्तर में ना बोला, लेकिन महाराज निमि ने कहा, नहीं, मुझे पूरे भौतिक शरीर नहीं चाहिए.
Marge Menemage responded to this drama of going on by saying, please do not imprisonate a damaged material body. In other words, being self-realized and understood with his body is nothing but a prison house.
महाराज जी ने इस ड्रामा में एक अलग रोल निभाया और बोला कि कहते हैं मुझे दोबारा भौतिक शरीर नहीं दीजिए. जो सेल्फ रियलाइज होते हैं, जो स्वरूप से होते हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें दोबारा अपने शरीर के अंदर बांधा जाए.
तो महाराज Nimi's body had been preserved in various bombs, B-A-L-M-S. Bombs means herbs and ointments and so forth, oil.
So Maharaj Nimi's body was kept in different tables in the temple.
So they are so powerful and such deeds as bringing life back to a dead body. The science is not known today. Anybody say? Did they teach you in the university? Scientists are all scientists. Did they teach you how to bring a dead body back to life in the university? Yes, the science is not known. They love to know the science. I mean, Walt Disney, you know, the famous Walt Disney, movie producer. Walt Disney.
So, जैसे महाराज ने कहा है सही बात है कि ऐसा नहीं बताया जाता, लेकिन जो विज्ञानी ऐसा जानना जरूर चाहते हैं, करना जरूर चाहते हैं.
He believed in a so-called science called cryonics.
So Walt Disney,
you know who Walt Disney is? Half your life is gone. Everybody know who Walt Disney is? Movie producer in the 1960s and 70s.
जो Walt Disney था, उसने भी अपने शरीर को ऐसे ही रखवाया था कि उसके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि उसे बाद में जीवित करा जाए. अगर हो सकता है बाद में भी जीवित करना ऐसा पॉसिबल हो, संभव हो, ताकि विज्ञानी उसको दोबारा जीवित कर सके.
But of course he had a material body, so of course he died of some disease, naturally.
क्योंकि उनका जो शरीर था वो बहुत ही शरीर था, तो उनको बीमारी ज्ञानी के कारण उन्होंने शरीर बाद में त्यागा.
All his money and fame couldn't save him.
सारा जो उनका पैसा था और जो उनका नाम था उन्होंने बचा नहीं पाया.
So he gave the order and set up before he died in his will, said that his body should be frozen An extremely expensive machinery, giant tanks and all that, that removed the blood from his body and kept some kind of fluid going in his body instead of blood or whatever, that something similar to that cryonics is called, in an attempt to keep the body from actually dying.
So, उन्होंने अपने बिल्ड के अंदर विरासत बिल्ड के अंदर ऐसा लिखा कि जो उनका शरीर है मरने के बाद उसे एक मशीन के अंदर डाल के रखा जाए, उनके शरीर के अंदर खून की जगह कोई और पदार्थ उनके शरीर में बने और उनके शरीर को रखा जाए, संभाल के रखा जाए.
So Disney's family was forced to spend, because of his will, Disney's family was forced to spend tens of millions or more US dollars to keep all this machinery going, keep his body frozen on his hope that science will be better in the future and they can bring his body back to life. This is true.
So Walt Disney ki parivar ko bahut sare 10 crore ya usse bhi zyada paise kharch karne pad rahe the us machinery ko chalane ke liye, usko rakhne ke liye. इस आशा में कि कभी साइंटिस्ट जो है ऐसा विज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसी साइंस होगी उनके पास, ऐसे दृढ़ शरीर को वो दोबारा जीवित कर सके, और तब वो जिंदगी को दोबारा जीवित कर पाएंगे.
This cryonics racket started when once they successfully throws a dog, it successfully throws a live dog.
और ये साथ हुआ था इसका विज्ञान उन्होंने समय का साथ किया था जब उन्होंने एक बार एक कुत्ते को जिंदा कुत्ते को पूरा जमा
किया था
और उसके बाद उसे दोबारा जीवित कर दिया था
But this ain't how he died of disease.
देखिए तो बहुत डिजनी थे वो तो व्याधि से मरे थे एक बीमारी से मरे थे उनके पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था
So after decades of wasting tens of millions of dollars or more,
तो शायद 10-20 साल के बाद और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद
His family decided they had enough of wasting money on us. They decided they had enough of this nonsense. Wasting the family dynasty's money, you know, on some myth.
Walt Disney की family ने अब निश्चित कर दिया, अब बहुत हो गया। ये बेकार के पैसे खर्च करना ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, पता नहीं कब की आ जाए कब होगा।
So they had the bucks, so they hired some scientists and some doctors to give sworn testimony that this cryonics was bogus, not real science. They had the bucks, it's easy for them to, you know, pay some scientists and some doctors to say that there was no truth in it, and therefore they could unplug him. That was the whole point, to unplug his frozen body so they would have to pay for his. He was costing hundreds of thousands of dollars a year to keep his body frozen in a special
तो वॉल्ट डिज़्नी की फैमिली ने काफी सारे डॉक्टरों और वैज्ञानिक को अपने पास करे उन्होंने काफी सारे पैसे दिए और उनसे ये प्रूव करवाया कि तो जो कुत्ते को जैसे उन्होंने जिंदा किया था जिंदे कुत्ते को जमाने के बाद ऐसा ये सच नहीं है और ये जो वॉल्ट डिज़्नी को कभी दोबारा जिंदा नहीं किया जाता इसको पूरा प्रूव कराया ताकि वो ये जो मशीनरी चल रही थी जिसके हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे उसको बंद करा सके
So Maharaj Rinji probably explains, Maharaj Rinji did not want to accept the material body again, which would be a cause of bondage because he was a devotee. He wanted a body which he could render the most service to the Lord uninterrupted.
So Prabhupada here writes that Maharaj Rinji did not want to accept the material body again, because he was a bondage ka karan manta. Aur bhakt hone ke karan, ve aisa shareer chahte the, jisko upyog Bhagwan ki bhakti karne mein kiya ja sake.
So in verse 10 he says, I do not wish to accept the material body, for such a body is the source of all distress, meditation, and fear.
मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र दुख शोक तथा भय का कारण होता है
Everywhere in the universe, just as it is for a fish in the water, which lives always in anxiety because of fear of death.
जिस तरह कि जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंता ग्रस्त रहती है
Here should be for some students some interesting insight into the mentality of the fish. We don't know these things, but we hear from the great soul Sri Goswami that fish live in fear of being swallowed by some bigger fish. This is the whole point.
तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जो मछली की मानसिकता है वो बता रहे हैं कि कैसे जो मछली है जो पानी में रहती है हमेशा भय में रहती है कि कब उसे बड़ी मछली खा ले
Even in the pastime of Matsya Avatar.
यहाँ तक कि मत्स्य अवतार में भी हमें देख रहे हैं
He was just a little fishy, maybe he was. Let's say, for the sake of discussion, let's say he was only about an inch long, so 4 centimeters.
जैसे हम मत्स्य अवतार में देखते हैं कि जो मत्स्य अवतार में जो पहले मछली थी भगवान थे वो बहुत छोटे थे करीब एक इंच के बराबर थे
The king was just scooping up some sacred water from the sacred river for his puja.
जो राजा थे वो अपनी पूजा के लिए जल में से छुट्टी भर जल ले रहे थे
सो बाय एक्सीडेंट दैट्स अ जोक बाय एक्सीडेंट Actually, the real explanation is my will of the Lord.
So, Maharaj कहते हैं कि ये जोक है कि by accident कि उन्होंने ऐसा करा होगा क्योंकि हर चीज जो है भगवान के निर्देश अनुसार होती
है. He scooped up this little, very small fish in his logo.
तो तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लोटे में पानी भरा तो उस लोटे के अंदर वो छोटी मछली आ गई।
He was about to pour the fish back into the river.
तो वो उस मछली के साथ उस मछली को नदी में दोबारा डाल रहे थे।
The little fish said,
तो छोटी मछली ने उसे कहा,
You can't put me back in the water.
आप मुझे दोबारा नदी में नहीं डाल सकते। मैं बहुत छोटी सी मछली हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ये नदी का पानी बहुत मुझे दुखदायी है, बहुत डेंजरस खतरनाक लग रहा है, आप फिर मुझे भर
डालिए। It didn't, you know, because it was covered by over my, I didn't understand that it was a talking fish. So, again, the 11th verse, the demigods being requested by sages, said, let Mars Jimmy live without a material body, without a material body. Listen carefully.
So देवताओं ने कहा कि ठीक है कि महाराज जिमी बिना भौतिक शरीर से विहीन होकर रहे।
Let him live with a spiritual body as a personal associate of the Supreme Personality of Godhead.
वे अध्यात्मिक शरीर से भगवान के निधि पार्षद बनकर रहे।
And according to his desire, let him be manifest or unmanifest or common materially embodied people.
और एक अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे सामान्य देहधारी लोगों को दिखे या ना दिखे।
So Sri Prabhupada explains, the demigods wanted Mahārāja Nimi to come to life, but Mahārāja Nimi did not want to accept another material body.
तो प्रभात आचार्य में बताते हैं कि देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठे, किंतु वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करना नहीं चाह रहे थे।
Under the circumstances, the demigods, having been requested by the saintly persons, gave him the benediction that he would be able to stay in his spiritual body.
ऐसी दशा में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने जीवी को वर दिया कि वे अपनी आध्यात्मिक शरीर में रह सकते हैं।
Some foolish people think that spiritual body means ghost body. This is not
nice. नहीं, foolish नहीं। कई लोगों को लगता है, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, कि spiritual body का मतलब आध्यात्मिक शरीर का मतलब है भूत प्रेत का शरीर।
So the demigods gave King Nimi the benediction that he would be able to stay in a purely spiritual body, free from all gross and subtle material contamination.
तो जब देवताओं ने महाराज जिमी को वर दिया कि वो अपने आध्यात्मिक शरीर में रह सकते हैं, तो ये सटल बॉडी थी, भूत प्रेतों वाली बॉडी नहीं थी।
Multiple examples of great devotees ascending to the spiritual world in the same body.
ऐसे हम बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें जो महान से जीवात्माएं हैं वो आध्यात्मिक जगत में जाती हैं उसी शरीर के अंदर।
In other words, having a so-called material body in the material world, but being able to ascend to the spiritual body into the spiritual sky in the same body. There's several explanations of this in the
chapter. So, देखते हैं कि जैसे भौतिक संसार में भौतिक शरीर होती है, वैसे ही वो आध्यात्मिक जगत में जा पाते थे आध्यात्मिक शरीर के
साथ। The Supreme Personality of Godhead can be seen or unseen according to his own personal desire. Similarly, the devotee, being even more clear, could be seen or not as he chooses.
भगवान अपनी दिव्य इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रह सकता है।
Now this is really important. Try to catch the secret meaning of Prabhupada's statement. Rajagati Rajaguya, try to catch it.
बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, इसको कृपया समझने का प्रयास कीजिए, इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए कि क्या प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाह रहे हैं।
At the present time, we cannot see Śrīla Prabhupāda's so-called material body.
हम अभी के समय में श्री प्रभुपाद का शरीर को नहीं देख पाते.
But his jivan mukta means seeing or not seeing according to his desire. So he left behind Pansi the Parabha of this pastime. He left behind his so-called material body, but he is still alive in the world of Vrindavan and doing just fine. And so we can't see his spiritual body, we're not fit. One day we will see his spiritual body.
सुनाने अभ्यास के लिए इस प्रसंग में है. वैसे ही प्रभुपाद की लीला में भी कि प्रभुपाद ने भौतिक शरीर को छोड़ दिया लेकिन अपने आध्यात्मिक शरीर में अभी भी लोग वृंदावन में सेवा कर रहे हैं. और जब हम हमारे जब ऐसी क्वालिफिकेशन हमारी योग्यता होगी कि हम उसको देख पाएंगे कभी जब हमारे अंदर ऐसी योग्यता आएगी तो कभी हम आध्यात्मिक जगह जाके फिर प्रभुपाद को भी देख पाएंगे.
That such jiva mukta could be seen or not seen as it chooses.
So, हम यहाँ पे देखते हैं, इस यहाँ पे connection देखते हैं कि जो व्यक्ति जब जीवन मुक्त होते हैं वो व्यक्ति दृश्य और अदृश्य होते हैं.
You see the connection between these two pastimes here, pastimes of Prabhupada leaving his material body and the pastimes of Maharaj Devi described here.
यहाँ पे आप दोनों लीलाओं के कनेक्शन देख पा रहे हैं, प्रभुपाद की लीला में और यहाँ पे महाराज देवी की लीला में.
You see the connection? No. Blank. The connection between the pastime of Maharaj Devi living in his body and being awarded a spiritual body by works of the devas.
यहाँ पर देखते हैं कि जैसे महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा और उनको आध्यात्मिक शरीर तो देवताओं की प्रार्थना से प्राप्त हुआ.
Of course, Prabhupada is present as Nitya Siddha. He was not awarded a spiritual body by the mercy of the demigods. He simply reclaimed his original swarup or eternal spiritual form. He didn't have to take any benediction from the demigods for that. But in this case, Maharaj Devi was awarded a spiritual body by the mercy of the devas.
हम देखते हैं श्री प्रभुपाद की लीला में जब श्री प्रभुपाद ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा तो उन्होंने अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया लेकिन उनका आध्यात्मिक शरीर इस लीला की जैसा नहीं है. इस लीला में महाराज जीवी को देवताओं की प्रार्थना से उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ लेकिन श्री प्रभुपाद ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने के बाद उन्हें अपने योग्यता से ही आध्यात्मिक शरीर में प्राप्त हो गए.
So again, Prabhupada says, a devotee being jivan mukta can be seen or not seen as he chooses.
यहाँ पे श्री प्रभुपाद भी लिखते हैं एक भक्त जो जीवन मुक्त है वो अपने इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य हो सकते हैं.
You see the similarity here?
हम यहाँ पे सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं.
Yes, no.
Yes.
The Prabhupada continues, I've seen in Bhagavad Gita, Naham, Prakash, Savasya, Yogamaya, Subhava, Tata. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is not manifest to everyone and anyone. To the common man, he is unseen.
So, just like in Bhagavad Gita, it is said, Naham, Prakash, Savasya, Yogamaya, Subhava, Tata. Bhagavan Krishna, har kisi ke liye vyakt nahi hai. Ve samanya vyakti ke liye adrishya hi bane rehte hain.
Now Prabhupada quotes a verse that he quoted hundreds of times in his lectures, hundreds of times.
So Prabhupada अभी एक verse को quote करके यहाँ पे बताते हैं जो Prabhupada अपने lectures में काफी काफी सौ बार बोला होगा.
अतः श्री कृष्ण नाम आये ना मगर ग्रायाम इन ग्राय.
अतः श्री कृष्ण नाम आये ना मगर ग्रायाम इन ग्राय.
Krishna and his name, fame, qualities and paraphernalia cannot be completely understood.
कृष्ण तथा उनके नाम यश गुण एवं साध समान भौतिक रूप से समझ में नहीं आते.
Unless one is advanced in spiritual life, seva mukhi ki jiva ro, one cannot see Krishna.
जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ ना हो सेवा मुखे ही जीवा हो तब तक वह कृष्ण को देख नहीं सकता.
So by the mercy of Srila Prabhupada, we have deities all over the world, so we can see Krishna.
Shri Prabhupada ki kripa se, hamare paas aur vigrah hai desh ke har kone mein, hum Bhagwan Krishna ko dekh paate hain.
the deity is Krishna himself personally. Not even an expansion. Krishna is personally present in the deity.
तो जो अर्थ विग्रह है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है. ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है.
और सीताराम also
सीताराम भी स्वयं खुद है, अवतार नहीं.
तो इसे वहां पूछे फॉर्म ऑफ यू नो कार्बन बॉबल्स ऑन द वे और मेड इन वुड लाइक गणेश ऑन द वे और सुमंगला.
तो ये जो चाहे वो पत्थर के बने हो चाहे वो लकड़ी के बने हो जैसे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मान ये बुद्धि के बहुत ही कहीं है.
सो फॉर वर्सेस टू कम मैन ही मेड कृष्ण इज ऑन सीन.
तो प्रभुपाद देखते हैं कि साधारण व्यक्तियों के लिए वो दिखते नहीं है, अदृश्य रहते हैं.
Unless one is advanced in spiritual life, seva mukhi hi jivaro, one cannot see Krishna.
जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ ना हो तब तक वह श्री कृष्ण को देख नहीं सकता.
Therefore, the ability to see Krishna depends on Krishna's mercy.
अतः कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर रहती है.
So similarly, the nearby devotee cannot see that the deities are alive.
तो उसी प्रकार ये जो तरिष अधिकारी होते हैं वे देख नहीं पाते कि जो अर्थ विग्रह है तो जीवित है वास्तव में.
जो देवपाल के हाथ से द डेज इन चेंज योर एक्सप्रेशन.
यहां तक कि वो ये भी नहीं देख पाते कि जो भगवान है अर्थ विग्रह के फॉर्म में अपना जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करते हैं, बदलते
हैं. Decades ago, I was astonished when way back when the famous or infamous disciple or follower of Sri Prabhupada Kirtananda Swami.
So 10 या उससे कई साल पहले जो प्रभुपाद थे डिसाइपल कीर्तनानंद स्वामी.
Way back when he was in good standing long before Prabhupada's departure.
तो प्रभुपाद के जाने से पहले जब वो सही उसका आचरण था सही स्टैंडर्ड फॉलो करते थे.
I was looking through his photo album of Sri Sri Radha Ramachandra.
तो मैं उनकी जो फोटो एल्बम है उनको देख रहा था, देखने की फोटो उसकी नाम राधा रामचंद्र चंद्र थी.
Looking at the photos, I could see the photographic evidence that their expressions were changing from day to day. Oh, it's true. I looked at pictures and sometimes it didn't even hardly look like the same deity. The expression changed. The devotees, that is say, deities of themselves.
So, photo ko dekhke mere samne saakshat pratyaksh tha ki alag alag photo mein jo bhagwan ke arth vigrah ke jo expression the, jo face ke expression the, bahut alag the. Bas aap dekh pa rahe hain, kabhi kabhi aisa lagta hai same deities hi nahi hai. Itne uske expression change ho gaye.
So I said at that time, Maharaj said, it seems to me that this book is photographing evidence that the deities are changing, the expressions are new from day to day.
So I said to Maharaj, "Ko kaha ki aisa lagta hai is book ko dekhte hain ki ye saakshat udharan hai, saakshat pratyaksh hai ki ye hum se dekh sakte hain ki kaise jo deities hain, jo arth vigrah hai, wo apne face ke expression change karte hain."
So yes, it's true.
Aur Maharaj ne kaha, "Haan, ye sahi baat hai."
So you cannot understand the deity simply by looking with your fleshy eyeball at the form. You cannot understand the deity.
So aap to arth vigrah ko nahi samajh sakte apne is चमड़े की आंखों से देखकर आप नहीं समझ सकते.
Therefore, Prabhupada says, unless one has advanced spiritual life, seva mukhi hi jivaro, one cannot see Krishna.
इसके प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक आप भौतिक जब तक आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए ना हो सेवा मुखे ही जीवाओ तब तक आप श्रीकृष्ण को नहीं
देखते.
अतः कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है.
The same privilege of being seen or unseen according to one's own desire was given to Murakami.
अपनी इच्छा अनुसार देखे जाने या ना देखे जाने का एक ही विशेष अधिकार महाराज देवी को दिया गया.
Thus he lived in his original spiritual body as an associated spiritual character.
इस प्रकार वे अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से भगवान के पार्षद के रूप में रहे रहे.
Any questions, comments?
Is there any question that you can?
Yes.
Yes.
Do
उसको नहीं देखते कहा वही है कुछ मुझे साल होता है पूरा नहीं कहा हर साल बदलता है ये
साइंस क्वेश्चन
ठीक है और ये बहुत ही रेयर है ये ऐसा नहीं कि सब देख पाते हैं बहुत अच्छा एक मुझे समझ पाए
बिल्कुल स्टेटमेंट है बात
और अगर ये सही स्टेटमेंट है ना सही बता रहे हैं सत्र उसकी मंत्री वहां से आगे प्रारंभ होगी
मैं पहले से इन वैदिक टाइम्स ब्राह्मणा वास ईच एंड एवरी ब्राह्मणा वास कंसिडर्ड एज गुरु एंड पीपल यूज टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देम
ब्राह्मणा
वास कंसिडर्ड गुरु बट एज यू नो दैट ईच पर्सन हैज डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग नॉलेज सो इफ अ सिंगल पर्सन विल टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिफरेंट गुरु दैट ही विल नॉट बी कंफ्यूज He will be confused with
the progression. Yes.
How you say that in the other time, as I said, the Brahmanas, that the person is being instructed from the various Brahmanas, because all of them as their gurus. So if they take the instruction from many people, and he will be confused with subject matter. But subject matter and how they perform, they will be confused. They are just taking instruction from various people.
So if you have a Diksha Guru, and you want to accept serious instruction from a Siksha Guru, then you have to take instruction from the Diksha Guru if you want to, you could say, form a relationship with a Siksha Guru who might be a counselor or something like that. Generally, temple authorities set up a counseling system in good temples. Unfortunately, not all temples have this.
Not yet, sir.
No, but translate it.
तो दो जी का प्रश्न था कि जैसे महाराज ने बताया कि हम वैदिक काल में रहते हैं कि जो ब्राह्मण होते थे वो सबको गुरु की तरह समझा जाता था तो दो जी पूछ रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति इतने सारे ब्राह्मण सबको गुरु की तरह समझेगा और सबसे इंस्ट्रक्शन लेगा सबसे आदेश पालन करेगा तो हो सकता है सबके जो आदेश है वो एक दूसरे साथ समान ना हो या जिस तरीके से पालन करना हो एक समान ना हो तो फिर कैसे कर सकते थे कैसे समझे तो महाराज ने बताया कि स्मार्टी कंटेक्स्ट में हमारे एक शिक्षा गुरु होते हैं और आप किसी और से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अन्य किसी गुरु से अन्य किसी व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शिक्षा गुरु से बना सकते हैं शिक्षा गुरु से परमिशन लेते हैं और जहां तक कि हम अभी सारे टेम्पल्स में तो नहीं रहे कुछ टेम्पल्स में ऐसा सिस्टम है कि काउंसलिंग सिस्टम है कि हर एक व्यक्ति अपने कोई काउंसलर होता है अपने कोई लीडर होता है जिससे वो शिक्षा प्राप्त करता है
Therefore, Prabhupada said, if there's even one word of difference between Diksha and Siksha Guru, everything is spoiled. As far as what Siksha Guru is saying, if it's different from what Diksha Guru is saying, it's different.
आज कह रहे कि जो शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु का एक भी शब्द अलग नहीं होता क्योंकि सारी जो बातें हैं सेम होती हैं
Naturally, it will be confused. Especially, it happens a lot in our society, a lot, where I have sufficient experience. Well, I'll talk to somebody, I'll confuse them by, who's talked to at least six different devotees with six different opinions, and of course they're already confused.
Well, ऐसा खासतौर पे हमारी सोसाइटी में तो बहुत होता है हमारी सोसाइटी में तो बहुत होता है कि आचार्य नहीं ऐसे बहुत व्यक्ति से मिला हूं कि एक व्यक्ति छह लोगों से आदेश प्राप्त कर रहे छह लोगों से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है उससे आपका दर्द कर देगा.
So this region must be very, very careful for whom they take exception. They have to be authorized. The first one is to be authorized by the particular or authorized by the temple authorities who are representing the particular. This is the key. You think, you know, you're talking at the Sunday priest or the guest and you want to get some advice from the guest. Good luck.
तो महाराज है अगर हम वास्तव में सीरियस है तो हमें देखना चाहिए हम किससे जो आदेश है वो प्राप्त करें, किससे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं. और हो सकता है तो ऐसा करना चाहिए कि हम टेम्पल के जो आधार जो टेम्पल ने टेम्पल अथॉरिटीज ने जिनको ऑथराइज करा है कि जिससे आप शिक्षा दे सकते हैं आप उनसे शिक्षा लीजिए. ऐसा नहीं कि संडे लाफ्टीज में कोई व्यक्ति आया है कोई गेस्ट है आप उससे बातचीत करना स्टार्ट करें या उससे राय लेना स्टार्ट करें.
Saka, this means that if Vishishtha was after money, you see later on also, Vishishtha fell down. He fell down. He was underwater. He was doing his meditations. And then he became distracted by seeing some fish engaging sex. Same for sisters, right? No, I got the name wrong. Well, that was the other mystic stage. But it happens, the point is we see it happens. In other words, your sister is not a very devotee. That's the point. This person. Otherwise, if the sister was or is his brother still alive, and if you're a devotee of the Lord, then his disciple wouldn't even think of a person like you see. The Sakamani Vodhi.
So, Maharaj Lalaya, so this is a person that is a virtuous Buddhist thing. So, this is Maharaj Lalaya, so if you money is here, that's what you said, that's what you said, that's what you said. So, Buddhi Pusha is a king. Virtuous Buddhi is a king. So, Maharaj Lalaya, क्योंकि वो सकाम भक्त है, भगवान की शुद्ध भक्त है, तो सकाम भक्त है उनकी इच्छाएं काफी सारी होती है, जैसे हम रूटी के लिए पैसों की जरूरत है.
जस्ट लाइक इन द पास्ट टाइम ऑफ दक्ष व्हेन ही ऑफेंडेड लॉर्ड शिवा एंड व्हेन हिज डॉटर सती परफॉर्म द सती वर्क बाय मिस्टर पावर शी बर्न हर बॉडी इन फ्लेम्स सेल्फ इग्निटेड फ्लेम्स. In that pastime, there is a hard for us.
In the hard way?
Then after that, Lord Shiva became extremely angry.
So, we can see that in the past, we can see that when we are doing the yajna, we can see that when we are doing the yajna, we can see that when we are doing the yajna, we can see that when we are शिव को रिस्पेक्ट नहीं दे तो अपने आप को जला देते हैं कि अपनी अपनी शरीर के अपनी सब आपको जला देते हैं और उसके बाद लॉर्ड शिवा जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है.
Well, the error of cause that Yama Bhima required that took seized Daksha, put him on the sharp blade and cut his head off. That was his simple reaction for Mahabharata.
तो हम देखते हैं कि जैसे उसके बाद भगवान शिव जो है गुस्सा हो जाते हैं तो वो अपने जगहों से एक बाल निकालते हैं उसे एक राक्षस को पैदा करते हैं और राक्षस जो है जाकर दक्ष प्रजापति का हिस्सा जाकर काटता है उसका वध करता है.
Point is that Daksha was surrounded by Brahmas. They were the devotees of Lord Krishna, all of them. Sakamani. Full of material desire, but devotee is like Gemini. In our society, we know there are many average devotees who have many material desires, but they're devotees. You can't say they're not devotees just because they have material desires. They want money, they want sex, they want nice car, all these things, but they're devotees. It's not that.
So, we see that the Prajapati here, because here are all the Brahmans, all the Bhagavan's devotees. But they were all the Sakam devotees, because there were many desires. और अच्छा अपने सोसाइटी में भी देखते हैं बहुत सारे भक्त देखते हैं लेकिन काफी सारी सरकार इच्छाएं रखती हैं उनको मनी चाहिए उनको यौन सुख चाहिए उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए.
So Dakshin was a devotee, but he was punished because he made Aparad Mahabhava. But the point is that there were Brahmanas, some very highly placed Brahmanas were around and were servants in the court of Daksha. And they had to suffer, they sided with Daksha instead of Lord Shiva.
So they said, the important part of the Indian is the Daksha Prajapati. So the one they have them, they start out of them. But in this class, okay, जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण थे तो वो भी भगवान के पास थे क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ प्रजापति है उनका साइन दिया और भगवान शिव की दक्ष ने हिंसा करी थी
Same principle. Why did they side with Daksha instead of knowing that Lord Shiva was such a great Mahajana? They did not know this ability, but they were big, big Brahmins. So how come they side with a materialistic king like Daksha, although he's a devotee, instead of siding with Lord Shiva, who's, you know, not ordinary devotee at all, but is Mahajana, who is glorious on the science of Krishna consciousness?
जो ब्राह्मण है जबकि वो भगवान के भक्त थे लेकिन फिर भी वो अविद्या से जा रहे थे इग्नोरेंस कर रहे उन्होंने ये देखते हुए कि जो प्रजापति है प्रजापति वो भगवान शिव का वो अपराध कर रहे हैं भगवान शिव के प्रति अपराध कर रहे हैं शिव जी जो महाजन है दीवार महाजन से एक है तब से उन्होंने दस प्रजापति की साइड ली
They were on Daksha's payroll. They were big, big Brahmanas, but they were on Daksha's payroll. More or less, of course, not technically salary, but Brahmanas go work for free, generally, and very culturally. Right? They're given, we hear descriptions, you know, thousands of cows, gems, gold, they give women. So much remuneration is given to Brahmanas. So they don't work for free. I mean, they can. Well, generally, kings especially give generously. So they were on Daksha's payroll. They became compromised. The Susan Bushes became compromised, you see.
But that's a distinct now. Brahman was extremely on the side of the other. Duty Brahman, Jagdha Kandikin, who said Dakshina Lira. Duty Dakshina, who does Pradapati say Lira, who is the extreme that Pradapati does side of
So
then,
Bhakti Mahaprabhu, Govinda Swami Maharaj,
yeah.